नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट, ली कुआन यू की राजनीतिक आत्मकथा और सिंगापुर के राष्ट्र निर्माण का प्रत्यक्ष विवरण है। यह पुस्तक मुख्यतः 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद के वर्षों पर केंद्रित है, जब छोटे, संसाधन विहीन और जातीय रूप से विविध सिंगापुर का भविष्य अनिश्चित था। ली, जो सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री रहे, अपने सरकारी नोट्स, अभिलेखों और निजी अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि उनकी सरकार ने सुरक्षा, आवास, रोजगार, भ्रष्टाचार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे जोड़ा। पुस्तक केवल आर्थिक उन्नति का उत्सव नहीं है, यह उस कठोर शासन दृष्टि को भी सामने रखती है जिसमें व्यवस्था, योग्यता और दीर्घकालिक योजना को राजनीतिक उदारता से ऊपर रखा गया। इसी कारण यह संस्मरण प्रशंसा और विवाद दोनों पैदा करता है। इसका उद्देश्य एक असुरक्षित नवस्वतंत्र राज्य के विकास की व्याख्या करना है। साथ ही ली की नेतृत्व शैली, कूटनीतिक सोच और सामाजिक नीतियों का उनका पक्ष प्रस्तुत करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, अस्तित्व की चिंता से शुरू हुआ सिंगापुर का राष्ट्र निर्माण। पुस्तक का केंद्रीय आधार यह है कि सिंगापुर का विकास पहले से सुनिश्चित नहीं था। 1965 में अलगाव के समय उसके पास बड़ा घरेलू बाजार, प्राकृतिक संसाधन या सुरक्षित भू राजनीतिक स्थिति नहीं थी। ली कुआन यू इस परिस्थिति को केवल आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में नहीं देखते, बल्कि राज्य के अस्तित्व के संकट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार बेरोजगारी, खराब आवास, जातीय तनाव, साम्यवादी प्रभाव और बाहरी सुरक्षा की कमजोरियां एक दूसरे से जुड़ी समस्याएं थीं। इसलिए सरकार ने अलग अलग योजनाओं के बजाय राज्य क्षमता बनाने पर जोर दिया। इसमें सड़कों और बंदरगाह जैसी आधारभूत संरचना, सार्वजनिक आवास, रक्षा बल और प्रशासनिक विश्वसनीयता शामिल थे। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि निवेश आकर्षित करने के लिए केवल कर राहत पर्याप्त नहीं होती, कानून का भरोसा, कामकाजी बंदरगाह, प्रशिक्षित श्रमबल और सामाजिक स्थिरता भी आवश्यक है। ली के वर्णन में राष्ट्र निर्माण का अर्थ राष्ट्रीय प्रतीकों तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ रोजमर्रा की ऐसी संस्थाएं खड़ी करना है जिन पर नागरिक और विदेशी निवेशक दोनों निर्भर कर सकें। यह दृष्टि विकास को प्रशासनिक निष्पादन और सुरक्षा से जोड़ती है, न कि केवल उत्पादन या आय के आंकड़ों से। दूसरा, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सक्षम प्रशासन को आर्थिक नीति का आधार बनाना। ली का तर्क है कि स्वच्छ और प्रभावी प्रशासन सिंगापुर की आर्थिक रणनीति का सहायक हिस्सा नहीं, उसका मूल आधार था। औपनिवेशिक विरासत, सीमित संसाधनों और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय वातावरण में सरकार की विश्वसनीयता ही सबसे मूल्यवान संपत्ति बन सकती थी। इसलिए पुस्तक में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर रुख, प्रशासनिक अनुशासन और योग्य अधिकारियों की आवश्यकता बार बार उभरती है। इस मॉडल का व्यावहारिक तर्क सीधा है। यदि लाइसेंस, भूमि, बंदरगाह, पुलिस या न्याय व्यवस्था रिश्वत और अनिश्चितता से संचालित हो, तो उद्योग लागत और जोखिम बढ़ने पर कहीं और चला जाएगा। इसके विपरीत, नियमों का पूर्वानुमेय और समान अनुप्रयोग निवेश, बचत और दीर्घकालिक योजना को प्रोत्साहित करता है। ली सरकारी तंत्र को केवल आदेश देने वाली मशीन नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली संस्था के रूप में देखते हैं। हालांकि पुस्तक में इस दक्षता का स्वर ऊपर से नीचे तक नियंत्रण वाला है। प्रशासनिक क्षमता को जनता के प्रति प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्व दिया गया है। पाठक के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ली विकास की चर्चा में ईमानदार शासन, कार्यान्वयन और संस्थागत निरंतरता को अलग नहीं करते। फिर भी यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि हर देश सिंगापुर की प्रशासनिक व्यवस्था को उसी रूप में दोहरा सकता है, क्योंकि उसका आकार, इतिहास और राज्य संरचना विशिष्ट थे। तीसरा, बहुजातीय समाज में आवास, शिक्षा और सामाजिक अनुशासन की भूमिका। पुस्तक में सामाजिक नीति को कल्याणकारी खर्च भर नहीं माना गया है। ली कुआन यू के लिए सार्वजनिक आवास, शिक्षा और बहुजातीय सह अस्तित्व राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक उत्पादकता के उपकरण भी थे। सिंगापुर की चीनी, मलय और भारतीय आबादी के बीच औपनिवेशिक दौर से चली आ रही दूरियां तथा 1964 के जातीय दंगों की स्मृति ने इस प्रश्न को अत्यंत गंभीर बनाया। ली के अनुसार, यदि समुदाय अलग अलग इलाकों, अलग अवसरों और अलग राजनीतिक पहचान में बटे रहते, तो साझा राष्ट्र की भावना कमजोर पड़ती। आवास नीति में जातीय मिश्रण का लक्ष्य इसी जोखिम को घटाना था। शिक्षा और अंग्रेजी के व्यावहारिक उपयोग को भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवेश तथा विभिन्न समुदायों के बीच संपर्क से जोड़ा गया। पुस्तक यह भी दिखाती है कि ली व्यक्तिगत व्यवहार, परिवार, हरित परिवेश और नागरिक अनुशासन तक में राज्य की भूमिका स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि छोटे घनी आबादी वाले देश में अव्यवस्था की सामाजिक कीमत अधिक होती है। यही पुस्तक का सबसे विवादास्पद पक्ष है। समर्थकों को इसमें दूरदर्शी सामाजिक समन्वय दिखता है, जबकि आलोचकों को निजी विकल्पों और असहमति पर अत्यधिक सरकारी दखल। पुस्तक इस तनाव को हल नहीं करती, लेकिन ली की प्राथमिकता साफ करती है सामूहिक स्थिरता और एकीकृत नागरिकता। चौथा, रोजगार। वैश्विक व्यापार और मानव पूंजी पर आधारित विकास रणनीति। सिंगापुर के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, इसलिए ली का आर्थिक दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता के पारंपरिक विचार से अलग था। पुस्तक में विकास का रास्ता वैश्विक व्यापार, विनिर्माण निवेश, परिवहन संपर्क और कुशल मानव पूंजी के माध्यम से बनता है। सरकार ने ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन स्थापित करें, स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण मिले तथा देश धीरे धीरे अधिक जटिल गतिविधियों की ओर बढ़े। इस रणनीति का तर्क भूगोल को सीमा नहीं लाभ में बदलना था। समुद्री मार्गों के निकट स्थित शहर राज्य बंदरगाह, विमानन और वित्तीय सेवाओं का केंद्र बन सकता था यदि उसकी सेवाएं विश्वसनीय हो। ली सार्वजनिक आवास को भी श्रमिक स्थिरता से और शिक्षा को रोजगार योग्यता से जोड़ते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक नीतियां एक ही ढांचे में काम करती हैं। पुस्तक किसी मुक्त बाजार की निष्क्रिय कहानी नहीं सुनाती। इसमें राज्य बाजारों के लिए नियम, संरचना और श्रमबल तैयार करता है, पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और निर्यात के लिए दरवाजे खोलता है। यह मिश्रित व्यवस्था उसकी विशिष्टता है। फिर भी ली की आत्मकथा को नीति पुस्तिका की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। सिंगापुर का छोटा आकार, बंदरगाह स्थिति, प्रशासनिक नियंत्रण और विश्व अर्थव्यवस्था का उस समय का संदर्भ उसके परिणामों को प्रभावित करते थे। अंत में महाशक्तियों के बीच संतुलन और संप्रभुता की कूटनीति फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट का दायरा घरेलू सुधारों तक सीमित नहीं है। ली कुआन यू सिंगापुर की सुरक्षा और समृद्धि को एशिया की शक्ति राजनीति से जोड़कर देखते हैं। वे अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच बदलते संबंधों, दक्षिण पूर्व एशिया की असुरक्षाओं और विश्व व्यापार की जरूरतों पर अपने विचार रखते हैं। एक छोटे देश के लिए उनका मूल सिद्धांत है कि नैतिक घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण है वास्तविक शक्ति संतुलन को समझना। सिंगापुर को बड़े देशों के बीच किसी का स्थायी मोहरा बनने के बजाय उपयोगी, विश्वसनीय और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला पक्ष बनना था। ली अमेरिकी उपस्थिति को क्षेत्रीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, साथ ही चीन के उभार और उसकी ऐतिहासिक भूमिका को नजरअंदाज न करने की बात करते हैं। उनके व्यक्ति चित्रों में मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रीगन, डेंग शियाओपिंग और अन्य नेताओं पर स्पष्ट, कभी कभी तीखी टिप्पणियां मिलती हैं। ये अंश पुस्तक को संस्मरण से आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दस्तावेज बनाते हैं। उनका कूटनीतिक दृष्टिकोण आदर्शवाद विरोधी है। व्यापारिक संबंध, रक्षा, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित इसकी कसौटियां हैं। यही व्यावहारिकता सिंगापुर की घरेलू नीतियों और विदेश नीति के बीच एक स्पष्ट निरंतरता भी स्थापित करती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आधुनिक सिंगापुर, विकासशील राज्यों की नीति, सार्वजनिक प्रशासन, एशियाई भू राजनीति या राजनीतिक नेतृत्व को गंभीरता से समझना चाहते हैं। नीति निर्माताओं और प्रबंधन के विद्यार्थियों को इसमें संस्थाओं की विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार नियंत्रण, आधारभूत संरचना, शिक्षा और वैश्विक बाजारों के परस्पर संबंध का ठोस दृष्टिकोण मिलेगा। इतिहास के पाठकों के लिए इसका मूल्य इस बात में है कि घटनाओं का वर्णन उस व्यक्ति ने किया है जिसने निर्णयों में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। ली अपने सहयोगियों, विरोधियों और विदेशी नेताओं पर राय देने में संकोच नहीं करते, इसलिए पुस्तक में संस्मरण की जीवंतता और रणनीतिक विश्लेषण दोनों है। यही इसकी बड़ी शक्ति और सीमा भी है। यह निष्पक्ष अकादमिक इतिहास नहीं, बल्कि एक अत्यंत प्रभावशाली नेता द्वारा अपने शासन और विकल्पों का पक्ष है। इसलिए इसे नागरिक स्वतंत्रताओं, विपक्ष पर दबाव और राज्य के सामाजिक नियंत्रण संबंधी स्वतंत्र आलोचनाओं के साथ पढ़ना चाहिए। समान विकास कथाओं की तुलना में यह पुस्तक अलग इसलिए है कि इसमें आर्थिक उछाल को आंकड़ों या बाजार सुधारों तक सीमित नहीं किया गया। यह दिखाती है कि ली के विचार में विकास सुरक्षा, जातीय एकीकरण, प्रशासनिक अनुशासन और कूटनीतिक संतुलन की संयुक्त परियोजना था। पाठक को कोई सार्वभौमिक नुस्खा नहीं मिलता, पर छोटे और असुरक्षित राष्ट्र की रणनीतिक सोच को समझने का दुर्लभ प्रत्यक्ष स्रोत अवश्य मिलता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ली कुआन यू, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।